है, भातृप है। ये कैसा है? एक महासागर के समान है। यहां पर भरत की जीत मैं समझता हूं, भरत की जीत है, क्योंकि मर्यादा रूपी जो पहाड़ है वो प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाएगा। मर्यादा वहां पर कुछ, जहां पर प्रेम होता है वहां पर मर्यादा भी नहीं रहती, भंग हो जाती है। तो भरत की प्रेम, भरत का जो प्रेम है मर्यादा इसमें टूट सकता है। किंतु हां एक बात है, भरत जी की जीत हुई। अब ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, राम को अयोध्या ले सकते हैं या उनको वनवास के लिए कर सकते हैं। किंतु एक बात है, प्रेम की भी अपनी एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा क्या? अन्नाभिलाषिता शून्यम, अपना सुख मत देखे और दुख मत देखे। आराध्य देव जो उसके हैं उसके प्रति यदि प्रेम होगा तो सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देगा और उनके अनुकूल रुचि के प्रीति के लिए सब कुछ करेगा। इसलिए भरत का कर्तव्य होता है जीतने पर भी, भरत जी अब ये देखें जे राम क्या चाहते हैं, उसके इच्छा अनुसार ये काम करें। भरत जी का मोह टूट गया। अभी तक मैं अपना स्वार्थ देख रहा था, मैं सोच रहा था जिस जगत के लोग क्या कहेंगे, इसलिए रामचंद्र जी को लाना उचित है। मैं उनका छोटा भैया हूं इसलिए मुझको बड़ा दुख हो रहा था जे रामचंद्र जी जा रहे हैं। किंतु मैंने ये विचार नहीं कि या राम को इसमें सुख है या दुख है। राम ने कहा, राम से इन्होंने कहा, भैया आप विचार कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। राम ने कहा जे तुम्हारी विजय हुई, तुम जो चाहो वो कहो, मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा जे भैया अभी तक मैं समझता नहीं था, जो प्रति किसको कहते हैं अब मैंने समझा, जनक जी की कृपा से वो हमारे गुरु हैं। अब मुझको ये देखना है जिसके प्रति प्रीति होती है उसकी क्या इच्छा है, उसके अनुसार में हमको चलना चाहिए सेवक को। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए मरीज को समझ में नहीं आता। रामचंद्र जी कहने, देखो भैया तुम्हारी जीत तो हुई और मैंने राज्य ले लिया, मैंने राज्य छोड़ दिया था सदा के लिए, तो मैंने तुमने जो राज्य दिया मैं तुम्हारे कहने से राज्य ले लेता हूं। किंतु एक बात है, 14 वर्ष तक तुम हमारे प्रतिनिधि होकर के यहां पर रह करके हमारी सेवा करो, हमारे आदेश को मान करके। और मैं 14 वर्ष तक पिताजी का आदेश पालन करके राज्य लेते हुए भी राज्य अलग रह करके देवताओं का कार्य है, जगत का कार्य है, उसको कर करके मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा। मैंने कहा जी अच्छी बात है। रामचंद्र जी के आदेश से उनके खड़ाओं को लिया प्रतिनिधि के रूप में, सिर पर रख लिया उनके आदेश को, और लेकर के रामचंद्र जी का आदेश लेकर के रानियों के सहित में लेकर के बोल लौटे। रामचंद्र जी वहां से मगर जी आप नहीं रहेंगे, चले गए कहां अब दंडकारण्य। इधर में लौटे तो गांव में नहीं गए, अयोध्यापुरी में नहीं लौटे, नंदीग्राम वहां से 5-7 मील है, एक वन जैसा है जंगल और छोटा सा पहाड़, वहीं पर पहुंचे। वहीं पर राम जैसे रह रहे हैं वैसे ये रहने लगे, चटाई बिछा करके जैसे राम खाते हैं वैसे ही रहने लगे। उनकी मैया आई, बेटा आप जंगल वहां पर राजभवन जंगल जैसा मालूम है, बिच्छू काटते हैं, हमको यहीं पर रख लो। मैं नहीं, तुम प्रायश्चित तो करो जब तक जीवित रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैया का और हमारा संबंध नहीं तुम्हारा, अब राजमहल में तुम रहो महारानी के रूप में, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। लौट करके चली गई, पागल होकर के वहां पर चली गई। उन्होंने मैया नहीं कहा कभी भी, एक बार भी मैया नहीं किया। इसलिए राम का जो विरोधी है भरत जी ने उसको क्षमा नहीं किया। इसके बाद में दंडकारण्य में पहुंचे, वहां सीता जी की चोरी हुई, सुपर्णखा का नाक काटा गया। इसके बाद में मृगया बन करके वो आया मरीज, रामचंद्र जी के यहां से रामचंद्र जी को भगा ले गया। और इसके बाद में रावण आकर के सीता जी को चोरी की, जटायु को मारा, किस प्रकार से वहां ले गया, किस प्रकार से युद्ध हुआ, अब इसका पीछे हम वर्णन करेंगे। आज यहीं तक मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि अब रामचंद्र जी का जन्म का, कृष्ण का जन्म का ये समय आ रहा है। अभी संक्षेप में तुम रामचंद्र कृष्ण का अभी जन्म अभी आविर्भाव करा दो। एक ही समय में मथुरा में उनका प्रादुर्भाव और गोकुल में उनका जन्म हुआ। यहां पर वासुदेव कृष्ण का आविर्भाव हुआ और गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसलिए जाता ह्लादो महात्मना, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। परीक्षित को खुश करने के लिए मथुरा संबंधी कृष्ण का वर्णन किए और जब भाव में डूब गए, अपने आप हृदय का उनका जो भाव था वो प्रकट हो गया, तब उन्होंने नंद जी का पुत्र, यशोदा जी का पुत्र इत्यादि सब अपने आप वो कह दिए। कृष्ण को पाने के लिए सबसे पहले हृदय को पवित्र करने की जरूरत है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, पूत नहीं होगा, अपूत रहेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता किसको कहते हैं? इसलिए पूतना सबसे पहले उनके पास में आई और भगवान ने उसे भ्रातृ उचित गति दी, केवल एक वेश के नाते उसने मैया का वेश बनाया, ब्रजवासियों का और उसमें भी मैया का वेश बनाया। बस कृष्ण ने उसे देखा, जो मैया का किसी प्रकार से कपटता से भी हमारे पास में आई है, इसलिए धात्री उचित गति दी। मातृ गति उचित नहीं दी, धात्री गति उचित। और मैं समझता हूं कि उसको ब्रज में न देकर के गोलोक में उसको दिया, ब्रज में नहीं गोलोक में उसकी गति दी। ब्रज से गोलोक का कुछ पार्थक्य है, एक होने पर भी रसगत वैचित्र है। इसके बाद में तृणावर्ताया सकटासुर, सकटासुर से कहते हैं जैसे गाड़ी है, गाड़ी में कोई चीज लाद कर ले जाते हैं रखकर, समस्त शास्त्रों का भंडार और ज्ञान उस पर लाद लिया, किंतु स्वयं वह एकनिष्ठ रूप में अनन्य रूप में कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो वह सकटासुर का रूप है। समझो इस चीज को। जो लोग समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेद वेदांत उपनिषद सबका, भागवत का भी, किंतु कपटता है, उसने देखा जे पुतना ने शरीर धारण करके कृष्ण को मारने आई किंतु मार नहीं सकी, अब मैं ऐसा करूं कि किसी गाड़ी में आविष्ट हो जाऊंगा, किसी वस्तु में जो कृष्ण देख नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा, और हम उसे मार डालेंगे, पीस देंगे। तो इसलिए सकटासुर किसको कहते हैं? जैसे वो गाड़ी में आविष्ट हुआ, ऐसे समस्त शास्त्रों का उनको ज्ञान है, सभा ज्ञान, सभा में ज्ञान देने वाले। कैसा ज्ञान? एक पंडित भागवत बांच रहे थे, उनकी पत्नी भी, पत्नी को मना किया जो मत आना इस सभा में, किंतु बेचारी जैसे तैसे वो आकर के छिप करके बैठी गई, भागवत की कथा हो रही। उसने कहा, जब अम्बरीश महाराज की कथा आई तो उन्होंने कहा एकादशी का जरूर पालन करना चाहिए और निर्जला रहना चाहिए। पत्नी के हृदय में यह बात आ गई और अम्बरीश महाराज का महापुरुष ने समझा ये वर देने में और अभिसंपाद देने में जो माहिर हैं, सिद्ध हैं, ऐसे ब्रह्मजोगी जिसको जो जिला दें मार दें, जिनकी गति बहुत दूर तक है, भोर हुआ महाजाना सब तप और नीचे में तल तलातल पाताल रसातल तक, ऐसे ऋषि उन्होंने कृत्या छोड़ी, जहां के तहां ये खड़े रहे अम्बरीश महाराज अपने एक पैरों पर एक वर्ष तक प्रतीक्षा किया और जहां वो सुदर्शन चक्र इसको मार करके कृत्या को, और जब उसका पीछा किया तो ये भगे। देखो जो भगवान के ऊपर कितनी किसका विश्वास है। कृष्ण हमको रक्षा करते हैं, शरणागति का ये पहला अध्याय, कृष्ण हमें रक्षा करते हैं और मैं रक्षक रूप में उनका वर्णन करता हूं। यदि शरणागति हुई और फिर दूसरों से ये कहते हैं अरे बचाओ ने? या कोई दुख दर्द के लिए दूसरों के पास में जाते हैं तो वो शरणागति कैसी? तो कृष्ण पर तुम्हारा क्या भरोसा हुआ है? इतने पंडित हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, किंतु भगवान का चरण आश्रय नहीं है। इसलिए पतन की अभा अनादृत जुष्मदान घाय, बड़े बड़े योगी लोग जो अपने को वो ज्ञान मा अपने को ज्ञानी समझते हैं और कहां ऊपर से गिर पड़ते हैं भगवान के चरणों का अनादर करने के। अब सोचा मुक्ता मुक्ति अभिमानी, अब मुझको मुक्ति मिल गई मिल गई, और वहां से ठीक उल्टे गिर पड़ते हैं। इनका ब्रह्म से संबंध नहीं था, ब्रह्म से संबंध किंतु परब्रह्म जो कृष्ण है भगवान है ऐसा विश्वास। अवधर में अम्बरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को, सारे अंगों को, मन को, जो कुछ था उनका सब कुछ लगा दिया भगवान की सेवा में। इसलिए वो तो खड़े रहे, मृत्यु का भय नहीं किया, और ये डर के मारे भगे और अंत में इनके चरणों में आकर के गिरे। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर के एकादशी की पत्नी घर में चली गई और कुछ नहीं बनाया। आज कथावाचक वहां से चले घर में आए, अरे खाने के लिए ले आओ, भोजन ले आओ, आज तो एकादशी है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। बनाया क्यों नहीं बनाया? अरे अपने लिए थोड़े कहा, उन लोगों के लिए कहा, दूसरे लोगों के लिए जो कुछ समझते नहीं है। जल्दी से आलू का दम और घी की पूड़ी और मिठाई इत्यादि जल्दी से लिया। कहा जी ये मेरे द्वारा संभव नहीं, तो लठिया उठाई। तो ये सब क्या है? शास्त्रों का भार है। कृष्ण की एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, भागवत का ये प्रतिपाद्य विषय है, जिसमें उद्धव जी जैसे लोग कहते हैं गोपियों के लिए, आशाम हो चरण रेण दुषाम सबई पुंसान करो धर्म जतो भक्ति वधो खजे अह तुक्का प्रतिहता जयात्मा संपुष्य। सबई पुंसान, वही मैंने निश्चयार्थे, परम पुरुष जो कृष्ण हैं, अधोक्षज हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, उनकी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। धर्म पूज्य कही तो वो अत्र परमो निर्मा शरणान, इसमें भी वैसा ही आया। भागवत को पाठ करते हैं और चंडी जी का कंकाली की, उनकी गृह देवती देवी है, वो जितनी दुर्गा काली इत्यादि शंकर गणेश, भागवत में कहां लिखा गणेश जी की पूजा आरंभ करके तब भागवत पढ़ो? अरे कृष्ण तो स्वयं मंगलवाचक हैं, उसके लिए ये सब की मंगलाचरण करने की उसकी जरूरत है, गजानन इत्यादि की। इसलिए आरंभ ही किया जन्म आदर्श जता अन्य आदि तरफ इत्यादि, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। इसलिए जो शास्त्रों का भार वहन करते हैं, भागवत को भी गीता और बड़े सूर से पाठ करेंगे, किंतु कृष्ण का भजन नहीं करके दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। यदि कृष्ण का भी भजन करते हैं कपटता के साथ में, अर्थ के लाभ के, ये सब जितने हैं ये सकटासुर हैं, उनके कपटता को दूर करते हैं भगवान। इसी तरह से त्रिनावर्त, दूसरों के आंख में धूल डालना, ये त्रिनावर्त माने आंधी, बड़ी जोर से आंधी आई, यशोदा जी कृष्ण को गोदी में लिए हुए हैं, स्तनपान करा रहे, उसने अलक्षित रूप में बंदर का रूप धारण किया, हवा में प्रविष्ट हो गया, बड़ी जोर से आंधी आई, धूल कंकड़ सब कुछ उड़ने लगे, सबकी आंखें बंद हो गई, घोर अंधकार हो गया। कृष्ण देखा जैसे आज मैं थोड़ा सा आकाश में शैर करूं, उन्होंने इतना भार दिया जो सुगमन के ऐसा लगे क्यों भार हो गया, उठा करके पासी में रख ली। आज इतने में उसने देखा यशोदा जी के गोद से अब ये नीचे चला गया, झट बॉन्डर ने कृष्ण को भी उठाया ऊपर, कृष्ण ने उसके गर्दन में हाथ लगा दी, जब पूरा रूप में घूम लिए तो जी अब मैया से, अब मैया के पास चलनी चाहिए। तो उसने थोड़ा सा गलत ऐसे दबाया, कृष्ण ने कहा मैं खेली ने तुम्हारा गला पकड़ लिया, जब तुम्हारे आंखें रसगुल्ले जैसे निकल जाती है और प्राण का वियोग भी हो जाता है, तो मैं क्या करूं, मैंने तो कोई रूप बड़ा नहीं दिखलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और तुम इसी प्रकार से यदि मर जाते हो तो मैं क्या करूं। वहीं से नीचे गिरा, उसके ऊपर में छाती के ऊपर में वो गिरे। ये क्या चीज है? स्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में भक्ति ही प्रयोजन बतलाई गई, कैवल्यक प्रयोजनम। कैवल्य क्या है? हमने कल परसों बतलाया था, परसों तीन चार दिन पहले मथुरा में समस्त टॉप के जितने विद्वान हैं उन लोगों को बुलाया था, भागवत के बड़े बड़े वक्ता, और मैंने विषय रखा था कैवल्यक प्रयोजनम। सब लोगों ने भक्ति को ही कैवल्य बतलाया, और है ही यथार्थ में कैवल्य भक्ति, कैवल्य प्रेम। ऐसा कोई भी स्थल जो श्रीमद् भागवत में नहीं आया है जो शुद्धा भक्ति की प्रशंसा नहीं की गई हो, और जो कैवल्य मुक्ति जिसको कहते हैं भगवान के अंदर में मिल जाना, जिसको साई जो कहते हैं, इसको धिक्कार नहीं दिया गया। यहां तक कि कृष्ण स्वयं कहते हैं विमानम न गृहणंती बिना मत्सेवनम जना। और भी बतलाए, एक और श्लोक में है, नहीं ये तो बतलाया, और एक जो उस दिन बतलाया था, बतलाता है जैसे ये सब मुक्तियां देने पर भी न बांछंती, क्या वो बांछंती नहीं, तो वो देने पर भी कैवल्य मुक्ति भी यदि दूं उनको, ऐसे कहते नहीं नहीं प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं। श्रेष्ठ तीन भक्ति मुदिश्यते विधो क्लेश अंत जे केवल बोध लब्ध है तेषां क्लेश अवश्य। अरे गीता में तस्प क्लेश अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां, कितनी सब ज्ञाने प्रयास मुकपाश्य नवंत एव जीवंति सन्मुखरितान भवदीय वार्ताम। कितनी बड़ी सब बतलाई भक्ति की महिमा और मुक्ति का उत्कर्ष। निष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजन। अरे निरंजन जो ज्ञान है, विशुद्ध जो ज्ञान है, उसकी ही नहीं शोभा होती है, तो उस ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति की क्या प्रशंसा रहेगी। निष्कर्म ये जो काम है, सब समय अभद्र हैं, इनकी कैसे शोभा होगी। इतना पढ़ लिख करके भी, रोज पाठ करके भी, त्रिपुंड धारण करके, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि करते हैं। अरे तत्त्वमसि का अर्थ यदि करते तो तस्त्वम असि, तभी एक बात होती। इसलिए श्रीमद् भागवत शंकराचार्य ने इसीलिए इस पर कोई टीका नहीं लिखी, हाथ नहीं दिया डर के मारे जब प्रभु हमको चौपट कर देंगे, इसलिए इस पर नहीं लिखी, और सब इधर उधर में लिखा, गीता पर भी लिख दिया, किंतु भागवत भगवान का स्वरूप है ना, इसलिए इस पर नहीं लिखा। इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं, पढ़ते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, और बाउंडर के रूप में सबके आंखों में धूल झोंक करके ये कहते हैं आम ब्रह्मास्म सोहम सोहम करते हैं, कहते हैं कि भागवत में तो ही लिखा है, कहां लिखा है। अरे गोपियां जब कृष्ण के अंतर्ध्यान होकर होने पर कृष्ण को खोज रही, खोजते 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 होकर करके लीला बस, तब वो क्या कर रही है, मैं ही वही हूं, कृष्ण बन गई। कृष्ण कैसे बन गई, कोई कहती है अपने कपड़े को उठा दिया, देखो मैं कैसे गोवर्धन धारण कर रही हूं, मेरी ललित गति कैसी है, किससे कह रही हूं, अद्वैत ब्रह्म किससे कहेगा, यदि सभी कुछ ब्रह्म ही हो गया तो कहने वाला सुनने वाला कौन, ये कौन किसे एक गोपी दूसरे से कह रही है। अरे उसको समझना चाहिए, भक्त दिशा में सिंधु इत्यादि के ग्रंथों को नहीं पढ़ने से तनिक भी ज्ञान में नहीं अर्थ लगा सकता, भागवत का कभी संभव पर नहीं है। सब चीज के पारिभाषिक शब्दों का पारिभाषिक अर्थ किया है, यहां पर लीला एक अनुभव है, अत्यंत तन्मयता में कभी कभी ऐसा हो जाता है। किंतु देखो वो एक सखी से कह रही है, सखी देखो तो मेरी कैसी ललित गति है, गोवर्धन धाम को दो। एक को उसने देखा पूतना और अपने उसका छाती पर चढ़ गई उसका दूध पान। अरे यदि अद्वैती ब्रह्म रहता तो वो किसकी छाती पर कौन चढ़ता और दूध ये तीसरा चीज कहां से आता, ये तीन चीजें कैसे होगी? उसमें तो त्रिपुटी का विनाश होता, इसमें त्रिपुटी का विनाश हुआ कहां? इसमें तो साध्य साधन साधक रहा, आराधना आराध्य और आराधक भी रहा। जो गोपी देख रही है तन्मय होकर के लीला में अनुभव उसके लिए हो रही है, वो तो कृष्ण जैसे उसकी भावना हुई। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, आवेश खत्म हुआ तो वो हो जाएगा। अच्छा, उस समय में जो पुतना बनी हुई है, एक गोपी को पुतना का आवेश हुआ इसलिए पुतना बन गई, जो इसको पकड़ लिया। विश्वनाथ ठाकुर जी ने यह शंका उठाई, आराध समझ में जो बोल रहा हूं, जो कृष्ण होकर के तन्मय हुआ तो कृष्ण का लीला चिंतन करने से कृष्ण में तन्मयता और आवेश हो सकता, यह बात तो ठीक है। तो पुतना में उनका आवेश कैसे हुआ, जो एक दूसरी पुतना बन गई? कैसे बन गई पुतना? पुतना में तो आवेश उनका नहीं है, तो एक दूसरी पुतना गई और उसको जिसको तन्मयता थी कृष्ण को उसको उसने पकड़ लिया, उसकी छाती पर चढ़ गई और उसका स्तन पान करने का अभिनय करने लगी। उन्होंने कहा जैसे किसी की भी आशुरक वृत्ति में तन्मयता नहीं होगी, गोपियां तो एकदम प्रेम की ध्वजा है, इसलिए ऐसा हुआ उनकी इस चीज को लीला की पुष्टि के लिए जोग माया ने एक माया की मूर्ति पुतना जैसी बना दी गोपी। उसी तरह से जितने भी विरोधी भाव वाली थी वो कोई भी गोपी नहीं थी, केवल कृष्ण में जो तन्मयता वाली थी वही गोपी का लीला का अनुभव है। अनुभव कैसे? जैसे शुद्ध सत्व में जब भगवत दर्शन और लीला का आनंद होता है, जैसे कृष्ण को यशोदा जी दूध पान करा रही हैं, कृष्ण उसे दूध पी रहे हैं, यशोदा जी कृष्ण को देखकर के वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, सिर पर हाथ फेरने लगी, एक हाथ से उसके बालों को सुलझाने लगी, आंख से आंसुओं की धारा प्रेम की बहने लगी, रोमांच पुलक इत्यादि हो गया। तब ही आई वात्सल्य रस, एक वात्सल्य रति होती है और रति में उसके द्रव्य जब मिलते हैं, क्या द्रव्य है वो? विवाह अनुभव सात्विक व्यभिचारी इत्यादि। जैसे चीनी, चीनी में पानी प्रपोषण रूप में और उसमें केवड़ा का थोड़ा सा पानी डाल दो या और कोई चीज मिला दो, गुलाब जल डाल दो, पर सुंदर रसाला हो जाता है। ऐसे जो रति है भाव, उसमें ये सब चीजें अनुभव सात्विक इत्यादि होने पर रस होता है, तब यह यशोदा जी का ये वात्सल्य रस है। ऐसे ही सब रसों को समझना चाहिए। तो जब ये पुलक रोमांच अश्रु पुलक कब होते हैं? अश्रु सात्विक भाव या व्यभिचारी भाव कब होते हैं? शुद्ध सत्व में जीव का जब शुद्ध हृदय में शुद्ध सत्व प्रकटित होता है, उस समय आत्मा में जो भाव होते हैं वो अनुमाने पीछे पीछे, पहले आत्मा में हुआ इसके बाद में शरीर में हुआ, इसलिए अनुभव कहते हैं, पीछे से जो भाव होते हैं। उसी तरह से उसको लीला में उस अनुभव को समझना चाहिए, ये तन्मयता के कारण में वो आत्मा में तन्मयता हुई, इधर शरीर में वैसा भाव आया। इसे श्रीमद भागवत में कहीं भी मुक्ति का स्थान नहीं है, इन्हें धर्म प्रोज्जित कई तो उमेश श्रीधर स्वामी जी ने और हमारे समस्त आचार्यों ने माना, मुक्ति का लेश भी नहीं होगा। इसी को कहते हैं कपटता। कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का भागवत पाठ करते हैं और यदि नजर और भावना है रुपये पर जो कितनी प्रणामी मिलेगी भागवत से, तो ये क्या हुआ? ये कपटता हो गया। अरे पेट भरने के लिए लाखों धन दे हैं, लाखों एक नहीं करोड़ों धन दे, जैन धर्म में ये सब का वर्णन आया है, भागवत में भी लिखा है। भागवत का सार कैसे चला गया? लोभी लोगों के द्वारा ये भागवत को बांचने से, इसलिए ये सब कपटता है। आंख में धूल डालने के लिए ये तृणावर्त कृष्ण उसका वध करते हैं। दामोदर लीला तक वृंदावन में गोकुल में लीला हुई। दामोदर लीला का तात्पर्य श्रीमान शुभानंद ने बतलाया होगा। दो चीज है, दो अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। दो अंगुल का क्या तात्पर्य? कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं ब्रज में जाऊं, गाय मेरे लिए दूध नहीं दे रहे बछड़ों को, सखा हमारे मेरे लिए खेल नहीं पा रहे, मैया यदि बांध दिया तो मैं बाहर नहीं जा सकता, मैया नहीं बांधती तो अच्छा। साथ ही साथ उनकी इच्छा शक्ति जो योग माया है, ऐसी लीला की रस्सी बढ़ने लगी और कृष्ण की कमर बारह अंगुल की जैसे की तैसी रही, जो सोदा जी का पहनाया हुआ करदिनी बनाई हुई करदिनी वो लगी हुई है, वो बढ़ घट नहीं रही। रस्सी बढ़ती 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 सारे गोकुल की रस्सियां जोड़ दी गई किंतु दो अंगुल कम पड़ती है, प्रति बार दो ही दागो, तीन अंगुल चार अंगुल दो अंगुल एक अंगुल नहीं पड़ता। इसमें पहली को बतलाया भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। भगवान की कृपा तो सर्वत्र ही है, सर्वत्र भगवान की कृपा है। एक अंगुल या दूसरी अंगुल हुई अपनी चेष्टा, साधन रूपी चेष्टा, सारी चेष्टाएं लगा देंगे भजन में। यदि हमने भगवान के लिए भजन नहीं किया, वैसा अम्बरीश महाराज को देखो जे कैसे निर्जला उपवास इत्यादि करते हैं, हमारे रूप सनातन इत्यादि को देखो, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार काद विजितौ चातंत दीनौ चजौ राधा कृष्णम गुणस्मृते मधुरिमान देन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। गोपियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण के लिए त्याग किया, पति पुत्र आत्मीय स्वजन यहां तक कि गुरुजनों के प्रति भाव जो है, लज्जा है लोक है सबको छोड़ देंगी महिलाएं, किंतु लज्जा नहीं छोड़ती, इस लज्जा को भी प्रत्याग कर दिया कृष्ण से, तब तो कृष्ण मिलते हैं। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयाशीत सबंधन, यशोदा जी का एक ये देखा जैसे सवेरे से बांधते बांधते प्रतिज्ञा कर रखी है, शाम हो जाएगी एक दिन दो दिन दस दिन एक वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष लाख वर्ष जन्म भर बांधती रहूं बांध करके छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ये उनकी प्रतिज्ञा। और दूसरी तरफ में वो कृष्ण की कृपा है, जब उन्होंने देखा जितने फूल थे उनकी जुड़ाव में वो सब गिर गए, श्वेत बिंदुओं से उनका मुख भर गया, टपकने लगा, यशोदा जी का मुख विवर्ण हो गया लाल हो गया। गोपियां करियां ताली बजा करके, देखो इसके ललाट में ब्रह्मा जी ने बंधन नहीं लिखा तू क्या बंधेगी, और मैं तो बांध करके रहूंगी, अब लज्जा भी आ रही है, तरह तरह के भाव बदल रहे हैं, चेहरा ये दर्पण है हृदय का, चेहरे से मालूम पड़ जाता है हृदय में कैसी भावना। यशोदा जी ने देखा मैं इस छोटे को बच्चे को जो हमारे गर्भ से निकला इसको बांध नहीं पा रही हूं, नारायण अब क्या होगा, मैं अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित किया। नारायण कौन है, नारायण के भी मूलांशी कौन है, वही तो उनका बच्चा बना हुआ। इसलिए कृष्ण ने उनके परिश्रम को देखा, उनके भावना को देखा और साथ साथ में कृपा से द्रवित हो गए। अब रस्सी दूसरी लाइन नहीं पड़ी अपने सिर के बांधने, अपने केश को बांधने के लिए जो रेशम की डोरी थी बस उसी से ही वो दो अंगुल पूरा हो गया। रमानु संप्रदाय में दो संप्रदाय है, एक बड़गलई और एक तेलंगलई, एक मरकट न्याय एक मारजार न्याय। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर देखा है ना चश्मा लगा करके जाओ देख लेगा, चप्पल पहन करके जाओ वो ले लेगा, कोई भी चीज लेकर के जाओ वो जरूर लेगा। उसके बच्चे होते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह उसको कूदना होता है, छलांग मारना होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक मकान से दूसरी डाली पर, तो क्यों ऐसे खड़ा होकर के ऐसे देखता है, और उसका बच्चा जहां से रहेगा टपक करके आएगा और उसको या तो ऊपर में या चेयर में कहीं ना कहीं वो अपने पैरों से और हाथों से पकड़ लेता है, और कुछ जाता है। बंदर कुछ, बंदर ये नहीं देखती है ये गिरा की बचा के क्या जाए, वो तो छलांग लगाएगी। यदि छूट गया बच्चे का, उसका शरीर छूट गया, यदि उसने छोड़ दिया तो वो गिर गया, उस बच्चे को अब जीवन भर नहीं छुएगी, चाहे बीबी लेता हुआ मर जाएगा किंतु अपने पास नहीं आने देगी, वो ऐसा ही उनका नियम है। और वो भी ऐसा एकदम चिपक जाता है, वो गिर नहीं सकता। इसमें बंदरी का कोई, बंदरी की कोई भी चेष्टा नहीं होती। दूसरी तरफ मारजार न्याय, मारजार मन कहते हैं बिल्ली, बिल्ली का बच्चा जन्म लेकर के म्याऊं 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 करता रहेगा, हटेगा नहीं, इधर से नहीं जाएगा, मैया दूर से सुनेगी तो आ जाएगी, दूध पिला देगी, या ले जाना होगा तो बच्चा कोई भी चेष्टा नहीं करेगा, बिल्ली उसके पकड़ लेगी उस बच्चे को, दांत न गड़ जाए, और पकड़ करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वो म्याऊं म्याऊं करता हुआ जाएगा। भक्त लोग कहते हैं, रामानुज के दो श्रेणी के भक्त लोग कहते कि मर जाग न्याय ठीक है, हम कोई भी चेष्टा नहीं करेंगे, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर में हो जाएगी, भगवान तो है तो कृपाशाली है, इसे कोई चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं, साधन भजन की जरूरत नहीं है, वो कैसे भगवान कृपा कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा संप्रदाय कहते हैं नहीं, हम लोग चेष्टा करेंगे, बिना चेष्टा के भगवान नहीं मिल सकते। इसका उदाहरण उन्होंने बंदरों का दिया। महाप्रभु जी से यह प्रश्न जबकि दक्षिण में गए तो उन लोगों ने पूछे इसकी क्या मीमांसा है, महाप्रभु जी ने कहा यही यशोदा जी का ये दामोदर लीला का देकर, भाई भगवान की कृपा सर्वत्र है, एक आदमी कुआं में गिर गया, ऊपर से कुछ लोगों ने रस्सी गिराई, यदि वह रस्सी नहीं पकड़ता है, कहता है भाई रस्सी पकड़ लो मैं ऊपर उठा लूंगा बच जाएगा, किंतु वो रस्सी भी नहीं पकड़ता ना? ऐसे भगवान की कृपा रूपी रज्जू है, पकड़ना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जब तक ऐसा नहीं करेंगे भगवान कृपा भी नहीं करते, इसकी कोई चेष्टा ही नहीं है, जो चेष्टा करेगा उसके ऊपर में भगवान की कृपा भी, तो है की कृपा रही क्या, अरे पकड़ना तो है ना, पकड़ेगा आदमी तब तो खींचेंगे, या उनके इसके संबंध में हमने बहुत कुछ बतलाया है। इसी तरह से वहां पर गोकुल की लीला समाप्त होती है, वृंदावन में आए, कितना बजा, 7 बज गया है, अच्छा 5 की, तो यहां पर आए, उन्होंने वहां पर और सब लीलाओं का वर्णन किया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, कृष्ण बलदेव सखाओं को लेकर के मधुबन के किरत में गोचारण कर रहे थे। बच्चों ने कहा कि आज तो बहुत बड़े भारी राक्षस ने हमें पकड़ लिया, हमारी किसी प्रकार से रक्षा, वो राक्षस क्या है, भूख, बड़ी भूख लग रही है, इधर केवल अशोक के पेड़ हैं, खाने के लिए कुछ फल फूल वाला नहीं, और भूख भी लग रही है, और एक सोनी सोनी सी सुगंध आ रही है, किस चीज के, पके हुए ताल फलों की, बहुत ही सुंदर सुगंध होती है, मीठी सी, बच्चे मचल जाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों के यहां पर ताल के कुछ पेड़ थे, देखने में भी सुंदर, बहुत सुंदर फल लगता है, और मीठा भी बहुत बेहद होता है, उसकी सुगंध चारों ओर में उठती है। बच्चों ने कहा आज हमें ताल फल करने खाने की इच्छा हो रही है, बलदेव प्रभु जी आज हमको ताल फल की गंध आ रही है, ले चले। जी कहां है ये, अरे पासी में ताल वन है कंस का, बहुत से ताल वृक्षों को लगवा रखा है, और वहां पर अपना एक अंचर है, उसका नाम है धेनुकासु, उसकी रक्षा के लिए लगा रखा है, उसकी पत्नी वो उसके बच्चे टच्चे बहुत हैं, कोई जंगल में जाता उसी बेश में आकर के उसे मार डालते हैं, एक फल भी नहीं लेते, और कंस के पास में उसको भेजवाते हैं, कंस अपने अनुचरों के साथ में उसका रसा स्वादन, कोई भी ब्रजवासी उसको नहीं पा सकते। अच्छा चलो, बलदेव जी को पहले बतलाने दिए गुरु तत्व हैं, कृष्ण का कुछ अपना कार्य है, कुछ गुरु का काम होता है, जब तक गुरु न रहे भव निधि तरे न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई, श्रीमद भागवत में ऐसा ही बतलाया, तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही वर्णन किया। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें कि गुरु की महिमा नहीं हो, किंतु गुरु भी गुरु होना चाहिए, शिष्य भी शिष्य होना चाहिए। आधुनिक काल जैसा शिष्य और गुरु नहीं, वो दोनों, वो तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, अंधई जथा अंधा उपनियमान ते अपि स्वतंत्रा गुरुदाम निबद्धा इत्यादि कहा है। यदि ऐसा नहीं, शुद्ध ऐकांतिक कृष्ण का भजन परायण गुरु हो, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य कान भान धावन करने वाला हो, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की अनुभूति वाला हो, शब्द ब्रह्म माने वेद उपनिषद शास्त्र श्रीमद भागवत, और पर ब्रह्म माने कृष्ण की अनुभूति हो, और विषयों से अनाशक्त हो, यह सब गुरु के लक्षण है। यदि समस्त शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी गुरु में एकांतिक कृष्ण की भक्ति नहीं है, विशेष करके कलयुग में कीर्तन प्रधान न हो, तो गुरु शब्दवाच्य नहीं हो सकता है जब तक अनुभूति न हो। और यदि शास्त्रों का ज्ञान वो देने में असमर्थ भी हो, एकांत की भक्ति हो, ज्ञान तो सब उसमें रहेगा जरूर, किंतु हो सकता है कि वो बोल ना सके, किंतु जरूर रहता है। इसलिए भगवान की अनुभूति जो है यही सर्वोपरि है, और जहां ये होगी साथ साथ में ज्ञान वैराग्य इत्यादि सभी उसके साथ में होंगे। ये बलदेव प्रभु जी कृष्ण ही स्वरूप हैं और गुरु तत्व है, अखंड गुरु तत्व है, वहीं से परंपरा आरंभ होनी चाहिए। उस परंपरा में जो आएगा वो समझो जो बलदेव जी की कृपा। भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधक है अज्ञानता, इसी को हम लोगों के शास्त्रों में भक्त स्वामी सुंदी इत्यादि में अनर्थ बतलाए गए हैं। चार प्रकार के अनर्थ बतलाए गए, कौन कौन? स्वरूप ब्रह्म, असत कृष्णा, हृदय दुर्बल्य, अपराध इत्यादि, और एक एक को चार चार भाग में बांटा। गुरु शिष्य को यह सब चीजों का उपदेश देता है और अज्ञानता को दूर करता है। सबसे बड़ी अज्ञानता है कृष्ण को भूलना, यही कृष्ण से भूलेंगे। भयं द्वितीयाद अभिनिवेश तस्यात् ईशेता ईशात अपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माया तो बुध आभजेत तं भक्तैक जेषां गुरु देवतात्मा। इसमें गुरुदेव की महिमा इसमें भी है, भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी के बाद में संसार की वासना होती है, वासना से फिर कर्म इत्यादि के रूप में आकर के भगवान को एकदम सबका भूल जाता है, मायाग्रस्त हो जाता है। गुरुदेव का कार्य है इस अज्ञानता को दूर करना। तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान ज्ञान से शिष्यों के इस अज्ञान को गुरुदेव काटते हैं, उसकी वासनाओं को दूर कर देते हैं सदा के लिए, और कृष्ण के चरणों की सेवा में उसे लगा देते हैं। भयंकासुर है गधा, पशुओं में भी सिंह रहित एकदम गधा, गधा माने मूर्खों को गधा कहते हैं। जो लोग समस्त शास्त्रों में विद्वान हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वेदांत इत्यादि सब उसको उनको मुखस्थ है, उपनिषद भी उनको मुखस्थ है, सब कुछ है, दूसरों को उपदेश देते हैं इस सब विषय का, किंतु कृष्ण का भजन नहीं करते, तो वो गधे की कोटि में है। इसलिए बलदेव प्रभु जी धेनुकासुर, धेनुकासुर माने गधा, उसका वध करके माने उसको दूर करके शिष्य को भगवान के चरणों में ले जाते हैं। गधा संसार का सब माल ढोता है, रसास्वादन नहीं करता। हमने देखा है पहाड़ों पर वो लेकर के जाता है गुड़, चीनी, शक्कर, घी, बुरा मैदा, अच्छे अच्छे कपड़े, सब सामान गधों पर लद करके जाता है, किंतु गधा को से उतार लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जाओ चलो, कुछ खिलाते भी नहीं, धोबी जितना गंदा माल है, अवर्जना जितना, छोड़े हुए मैले कपड़े इत्यादि सबको वो लेकर के जाता है घाट पर, और साफ करके ले आने के बाद में उसको पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता। यह है गधापन। शास्त्र समस्त पढ़ करके भी और भगवान की एकांत की भक्ति नहीं हुई, विशेष करके श्रीमद भागवत में क्या प्रयोजन है, कैवल्यै के प्रयोजनम या सबै पुंसांग परो धर्मो, परो धर्म, परो धर्म किसको बतलाया, परो धर्म गोपियों के सर्वोत्तम भाव को परम धर्म बताया, इसे परम धर्म और नहीं हो सकता। कृष्ण कठपुतली की भांति में जिनके हाथों में नाचते हैं, आशाम हो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लतौषधी नाम जह दुस्तजन स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजे मुकुंद पदवेम सुतभि ब्रह्मज्ञान। श्रुतियों के लिए अन्वेषणीय है किंतु गोपियों के मुट्ठी में है। कत न पारे हम नरबद्ध संयुजान, गोपियों के इस निर्मल प्रेम के इतने कायल हो जाते हैं, वो चित दिन के लिए ऋणी बन जाते हैं और इसी में अपना सौभाग्य समझते हैं कि मैं गोपियों का ऋणी हूं। प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, गोपियों से प्रेम की शिक्षा लेते हैं। कहां से आ रही है वृंदा, कस्मात वृंदे प्रिय सखी हरि पाद मिला, हरि के चरणों कमल से मैं आ रही हूं। कहां है वो वृंदारण्य, कहां राधा कुंड पर है, किम कुरते क्या कर रहे हैं, अरे वो नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, नृत्य नाचना कैसे होता वो शिक्षा ले रहे हैं। अरे कौन सिखला रहे हैं, गुरु का कौन गुरु है, तो वो सखी करिए राधा जी के लिए, आपकी ये मूर्ति है पेड़ों में पौधों में लताओं में उनके पत्तों में जो कांप रही है, यही आपकी मूर्ति सर्वत्र कृष्ण दर्शन करते हैं और उसी से नित्य शिक्षा कर रहे हैं। चैतन्य चैतन्य में तो स्पष्ट रूप से कहा गया क्या, प्रेमेर गुरु, प्रेम के गुरु है राधिका, और शिक्षा गुरु कौन है, विशाखा जी और ललिता जी, कौन स्वरूप दामोदर राय रमन, दीक्षा देने वाली कौन है, राधिका जी स्वयं, और शिक्षा देने वाली उसकी, व्याख्या करने वाली उनको प्रवेश कराने वाली प्रेम की। अरे कृष्ण तो विषय प्रेम के आदि हैं, हमको विषय प्रेम की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है, आश्रय प्रेम, कैसे कृष्ण की सेवा की जाती है, ये बेचारे कृष्ण क्या जानेंगे जब अपनी सेवा कैसी होती है, इसको जानती है सबसे अधिक राधा। इससे श्रीमती राधिका जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, यही कैवल्य के प्रयोजनम और श्रीमद भागवत का यही प्रतिपाद्य है। जो ऐसा नहीं जानते और ऐसा समझ करके राधिका भजन नहीं करते, कृष्ण का ही केवल भजन करते हैं, तो आक रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं जानी, जैसे सूरज बिना आतप के गर्मी के नहीं रह सकता प्रकाश के, माधव नहीं रह सकते। यदि गोपियां नहीं है, राधा जी नहीं है, तो वो निर्विशेष अव्यक्त अनादि ये ब्रह्म हो जाएंगे। राधा जी हैं इसलिए तब वो मदन मोहन है, और राधा जी नहीं रहे तो
मदन मोहित,
केवल मदन मोहित, और राधा जी कैसी है, मदन मोहन मोहिनी है। इसलिए श्रीमद भागवत, अरे कृष्ण के भजन की तो बात तो समस्त शास्त्रों में लिखी गई, भागवत का यह प्रतिपाद्य नहीं है। भागवत का प्रतिपाद्य यह है, सब शास्त्रों में यह कहते हैं कृष्ण का भजन करो, और इसमें बतलाया गया है प्रारंभ से कृष्ण भजन करते हैं अपने भक्तों की, यशोदा मैया के मार डर के मारे रोते हैं, सचमुच में रोते हैं, सखा उनके कंधों पर चढ़ करके दौड़ते हैं, दुल दुल करके घोड़े से जैसा उनको हांकते हैं, और गोपियां छाछ के थोड़ा सा छाछ लेकर उस पर नचाती हैं, इशारे पर नचाती हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत का प्रकार, इसलिए परम धर्म वही है। इसलिए हम जो बतला रहे थे धेनुकासुर शास्त्रों का आपका सब कुछ पढ़ करके भी, और इस रस में नहीं डूबे निगम कल्प तरुण गलितंग फलम सुखम काद अमृत, वो द्रव रसामृत क्या है जिसको भावुक और रसी भक्त लोग ग्रहण करते हैं, वो क्या चीज है, वही चीज है श्रीमती राधिका और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो चरित्र है। पांच प्राण है ये पांच अध्याय, इसके बाद में जुगल गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, ये सब अद्भुत अद्भुत, इनको निकाल दिया जाए भागवत से तो भागवत रहेगा क्या, रस नहीं रह सकता। इसलिए श्रीमद भागवत का ये प्रतिपाद्य है। इसलिए धेनुकासुर का वध करके वो जो मधु था उसका रस था, रस सखाओं के लिए और ब्रजवासी सब लोग भक्तों के लिए सुलभ कर दिया, ये बलदेव जी की महान कृपा है। इसी तरह से कालिय पर उन्होंने कृपा की, समय अधिक हो गया, आज मैं यही कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूं, कल काली पर कृपा, काली पर कृपा नहीं, काली माने नाग पत्नियों पर कृपा की, उनके वजह से काली बच गया, नहीं तो काली के बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके संबंध में जो विशेष बातें हैं हम लोग कल करेंगे। इस तरह से दैनिकवृत्त होगा और सब चलेंगे। 30 तारीख को लीला समाप्त, ये सब भागवत समाप्त होगी और 31 तारीख को हम लोग समापन इसका कर करके यज्ञ इत्यादि करके और इसको वैष्णव संत सबको थोड़ा प्रसाद दे करके और तब समाप्ति करेंगे। इसके बाद में बहुत जल्दी चलना है, 31 तारीख को ही मथुरा में पहुंचना है, वहां पर राधा जी का जन्मोत्सव हो, बड़े अच्छी तरह से मनाया जाए जैसे प्रतिवर्ष होता है और उत्साह के साथ में। मथुरावासी लोग हों अपने सहेलियों को कहें और अपने को भी ये ठीक कर लें, जैसे चाव आता था वो चाव एक एक घर से सब लोग ले आ करके ये स्थान निर्दिष्ट रहेगा गुप्ता जी के घर पर और वहीं से चाव निकलेगा। राधा जी के लिए सुंदर सुंदर चूड़िया सुहाग कपड़े वस्त्र, उनके श्याम सुंदर के लिए भी ये सब चीजें आएंगी और 56 तरह के सब अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें बनेंगी पदार्थ, और उनको लेकर के गोपियां कीर्तन करती हुई वहां पर आएंगी। राधा जी का अभिषेक होगा बड़े सुंदर रूप से। उनके तत्व के संबंध में हम लोग कुछ वर्णन करेंगे, स्तव स्तुतियां जो श्रीमद् भागवत इत्यादि में है। मुनंद्र बिंद बंदिते तिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी प्रजन्म भानुनंदिनी प्रजन्म सोनु संगते कदा करी शशी हमं कृपा कटाक्षभाजनम। अंतिम मखेश्वरी सुरेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी। आप लोग उसमें खूब अच्छी तरह से भाग लेंगे और उनके भजन में आप लोग निविष्ट रहेंगे। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कीर्तन के बाद में अभी आरती होगी, ठाकुर जी की भी आरती होगी, देख लगे। गोविंद जी मथुरा के ही हैं, मथुरा को छोड़ करके नहीं जाते, किंतु भक्तों के कुछ कारण कुछ लोगों ने अवज्ञा इत्यादि की या क्या उनकी कैसी लीला, या दूसरे जयपुर के भक्तों राजस्थान के भक्तों का हृदय देखकर कुछ दिन के लिए वहां पर चले गए, या एक रूप से यहां रहते हुए भी वहां पर चले गए, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। उन्होंने देखा कि ये भक्त बड़े प्रेम के साथ में भागवत सुन रहे हैं, इनको कुछ प्रसाद देना चाहिए, तो अनुग्रह दे करके उन्होंने कुछ प्रसाद उन्होंने भेजा है। अभी आरती होने के बाद ही मैं आरती होने के माने अभी तुरंत हम लोग यहां से प्रसाद देंगे, वो प्रसाद भी आप लोग लेकर के सिर पर रख करके और प्रसाद दें। गौ प्रमाण
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच तानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरप्रतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमामि कृष्ण तवैवास्मि मजुवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयनां च
छठा दिन में जाते सातवां
भागवत छठा अभी हम लोगों का बेणुगी प्रारंभ हुआ है। उसके पहले दवानल पान शायद हो गया होगा। किस प्रकार से जी भगवान का विमुख होकर के इस संसार में पड़ा हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैवी तीनों प्रकार के तापों से जर्जरित होता है। कृष्ण भी कोई भगवान को नहीं पुकारता रक्षा के लिए। यदि कोई भगवान से पुकारे सचमुच में आंतरिक हृदय से, तो उसे रक्षा तो हो ही जाएगी, अधिकांत रूप में उनके चरणों की सेवा भी प्राप्त कर लेगा गोलोक वृंदावन में। इसलिए दिखलाया कृष्ण गायों को लेकर के चराने जा रहे हैं। इंद्रियां हमारी वो गायें हैं, इंद्रियां भी विमुख हो गई हैं, कृष्ण के तरफ में पीछा कर दिया और सामने विषय भोग कर दिया। घास विषय है, जब घास चरने लगते हैं इंद्रियां सब चरने लगती हैं और अपने प्रभु को छोड़ देती हैं, तो दवालन में डरने लगती हैं, अपने आप घर्षण से वो आग पैदा होती है। क्या तात्पर्य हुआ, कोई दूसरा आग लगा नहीं देता, हमारे कर्मों के संघर्ष से ही अपने आप आग लगती है, उसी में हम अपने आप जलते हैं, दूसरी कोई आग नहीं लगाता। हम समझते हैं कि दूसरी कोई आग लगा रहा, मैं ही अपने कर्मों से अज्ञात रूप में भगवान को धूल हो करके ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि हम लोग तीनों प्रकार के तापों में सब समय जलते हैं। इससे कोई भी रक्षा नहीं पा सकता है, केवल ही पा सकता है जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को आत्मसमर्पण करे और उनको पुकारे। इस तरह से वो संसारिक तापों से बच जाएगा। जैसे गायों ने और सखाओं ने देखा कि हम तो भांडी बन में बैठे हुए हैं, गायें पागुर कर रही हैं बड़े आराम के साथ में, और सखा लोग कृष्ण के चारों तरफ में बैठ करके खा रहे हैं खिला रहे हैं शांति पूर्वक। हम लोग स्वप्न देख रहे थे, गायें सोचते कि स्वप्न देख रहे थे, सखा लोग देख रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं कि क्या थी, अब वो भूतकाल का विषय हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान की भक्ति यदि एकांतिक रूप में कोई करे, ताप अनायासी दूर हो जाते हैं और ये भूतकाल का विषय हो जाता है। हम देखते हैं कि कृष्ण के सेवा में निमग्न है, इतनी अच्छी और मधुर चीज है ये, किंतु फिर भी कष्ट से साध्य से कष्ट से जो दुख पाए जाते हैं सुख नहीं मिलता, किंतु थोड़े से आयास से ही स्वाभाविक रूप में परिश्रम से ही बिना परिश्रम का ही भगवान का भजन हो जाता है, हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अब ये गोपियों का चरित्र कुछ दे रहे हैं। गोपियां गोपियों का भी पूर्व राग समझो, हम लोगों का भी पूर्व राग है। कैसे पूर्व राग है, गुरु जी ने हमारे अंदर में कृष्ण सेवा की वासना दी। कृष्ण कैसे हैं इसलिए बतलाया, जे ऐसे हैं कैसे, बरहा पीड़ा नटवर बहु कर्णयो कर्णिकार विभ्रदास कनक कपि संवै जयंती चमाला रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपबिंदई बृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गुरु कह रहे हैं, पुरोहित कह रहा है, विवाह को कराने वाला मैं भस्त भी कह रहा है, कैसे श्याम सुंदर सुंदर है, बरहा पीड़म इसकी व्याख्या हो गई होगी, कैसे सुंदर है, स्वाभाविक रूप में वो सुंदर है, भूषणम भूषणांगम है वो, मेघ श्यामल है कोमलांगो मेघ के समान, कैसे मेघ के समान, जल से भरे हुए मेघ के समान, जो अभी बरसने वाला है, और उसमें विद्युत जो है वो कैसे हैं, वो पीताम्बर है। वो विद्युत चमक करके और ओझल हो जाती है, और यह विद्युत ये श्याम रूपी मेघ में के ऊपर में सब समय यह रहता है। उसमें मेघ कृष्ण है, कृष्ण के अंग है, और ये विद्युत उनके वस्त्र है। विद्युत से या मेघ से कृष्ण की और उनके वस्त्रों की उपमा नहीं दी जा सकती। तो भी एक शाखा चंद्र न्यासे कह रहे हैं, जैसे कोई एक वर हो खूब सुंदर, और जिसकी शादी होने वाली है वो कुमारी लड़की, और उससे कोई वर्णन करता है वो बड़ा गोरा है। कैसा गोरा है? गोरा एक तरह का होता है। जितने जगत में पुरुष या स्त्री हैं, या तो सांवले या गोरे होंगे, किंतु सभी एक समान होते हैं, एक समान होगा। सबके मुख सुंदर है, किंतु सबका मुख एक समान सुंदर होगा। सबके दांत एक तरह के होंगे, दांत किंतु एक तरह के नहीं। मुख एक ही समान, किंतु मुख की भंगी ऐसी होती है किसी की, देख करके आदमी मुग्ध हो जाता है। आंखें सबकी तो होती ही हैं, तो कृष्ण का कैसा मुखारविंद है, कैसी आंखें हैं, कैसी वनमाला है, कैसा उनका भुगराले केस, और उसके ऊपर में मोर मुकुट है। यह वर्णन के द्वारा कोई बतला सकता है? जब तक की अनुभूति न रहे, जो कह रहा है वो तो कह रहा है, यहां कैसी अनुभूति के साथ में कह रहा है? कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, किंतु जिन लोगों ने देखा नहीं वो क्या अनुभूति करेंगे? तो भी एक में एक तो धारणा तो बनेगी ही, वो जरूर धारणा बनेगी। गोपियों के बारे में ये जो कहा गया है, तो उनका कृष्ण से नित्य मिलन है, तभी उनका नित्य पूर्वराग भी है। अभी मिलन नहीं हुआ, उसके पहले की जो दशा मिलन के लिए जो आकांक्षा होती है, उसी प्रकार से गोपियों का नित्य मिलन कृष्ण के साथ में है, किंतु फिर भी वो ऐसी देखती हैं, मन कभी उनसे भेंट ही नहीं। कृष्ण से मिल करके गोपियां जा रही हैं, श्रीमती जी क्या कह रहे हैं, अभी शाम को जा रहे थे तो सूर्य अस्त होने जा रहा था, और जब मैं अभी आ रही हूं तुरंत, तो देख रही हूं क्या, अभी सूर्य उठ रहे हैं, ललाई आ रही है, अरुणोदय हो रहा है। आज रात ही नहीं हुई, हम मिले ही नहीं, चली थी किंतु मिली नहीं। ऐसे ही वहां पर ऐसा ही होता है। इसलिए साधक लोग गुरु के मुख से, भागवत के माध्यम से, हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों के माध्यम से कृष्ण के रूप की एक भावना रखेंगे। अरे ये तो नहीं, तो एक तो ऐसा होगा जैसे कोई बंसी लिए हुए खड़ा है। कैसे खड़ा है? त्रिभंग रूप से खड़ा है। ये तो हम कल्पना कर ही सकते हैं, यद्यपि यह कल्पना रूप नहीं है, किंतु एक तो है। इसलिए साधक के लिए यह पूर्वराग का जो विरह है, इसी का नाम भजन है। उनसे मिलने के लिए जिसके अंदर में जितनी विरह होगी, तर्पण होगी, जिस प्रकार से इन गोपियों को है, नित्य कृष्ण के साथ में मिलन होने पर भी इनकी जितनी हृदय में विरह है, मिलने के लिए तर्पण है, इसी को बतलाया गया वेणुगीत। वेणुगीत में कहीं भी बंसी या बंसी बांसुरी मुरली कहीं प्रयोग नहीं, कहीं भी इसमें 14 या कितने 16 कितने श्लोक हैं, कहीं भी इसमें दूसरा नाम नहीं, वेणु 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 सब श्लोकों में ही वेणु वेणु है। गोपियां उल्लाहना भरे भाव से कुछ मान करती हुई, गुमान करती हुई, कुछ टेढ़े ढंग से ये कृष्ण को उलाहना एक तरह से दे रही है।
बंसी को उलाहना दे रहे हैं प्रारंभ से। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभत बासव कनक कपिसंग बैजयंती जमाला रंध्रान देन अदर सुधया देन है न अदर सुधया देन देन अदर सुधया पूरे अनुभव कुंद बृंदारण्यम सबदरण पाप सतवीर के यही बेणु से उनके बेणु से चीड़ है। बेणु से चीड़ा है न प्यार है क्या है, है? आकर्षण है ना बेणु से। बेणु 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 कर क्यों कर रही उद्धव जी कहते हैं या भावरा कर रहे हैं ना उनसे भ्रमण। अरे श्याम 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 तुम कर रही है, श्याम धूर्त है चोर है अकृतज्ञ है ये सब कर रही है तो फिर उन्हीं का नाम क्यों ले रही, उनकी कथाओं को भूल क्यों नहीं जाती। तो कथाएं भूलती हैं वो, कभी हो सकता है कृष्ण को भूल जाए कि उनकी कथाओं को नहीं भूल सकती। अरे कृष्ण की कथाएं और कृष्ण अलग अलग थोड़े हैं, कृष्ण का कथाओं का स्मरण ही तो कृष्ण का स्मरण है, किंतु वो भूल नहीं पाती। इसलिए वेणु के प्रति कुछ चीड़ भी है कुछ स्नेह भी है कुछ बंधुत्व भी है सभी उसमें है। इसलिए गोपियां उसी को लक्ष्य करके कह रही हैं। इसलिए साधक को ऐसा ही भाव होना चाहिए, कृष्ण से मिलन की तीव्र आकांक्षा। चैतन्य महाप्रभु जी ने गंभीरा लीला में यही दिखलाया, कैसी उनको कृष्ण के प्रति विरह है, मिलन की कितनी उत्कंठा है। अरे उतनी ना हो उतना हम लोगों से नहीं होगा, किंतु होना तो कुछ तो होगा, होना चाहिए कुछ भी तो होना चाहिए, हम लोगों को इसके लिए नहीं होगा। ये कैसे होगा, हरी कथा सुनने से होगा ना, जितने उनके विषय में हमारी ममत हमारा ममत्व होगा कृष्ण के साथ ममत्व होगा, कृष्ण के ममत्व होने के पहले गुरु और वैष्णव में ममत्व होगा ना? जैसे अपने लड़के के प्रति लड़की के प्रति स्त्री के प्रति ममता होती है ऐसे नहीं मालूम होगी। 10 वर्ष तक 20 वर्ष तक अपने बच्चे के साथ में कोई रहे मालूम नहीं होगा जो ममता है, किंतु उसका अपहरण हो जाए एक दिन के लिए एक घंटे के लिए तो देखो तो वो ममता कैसे रंग लाएगी। हम लोग भी मठ में इतने आदमी रहते हैं ममता मालूम नहीं होता कि ममत पर रहती है, कैसे मालूम हो। यदि वो किसी प्रकार से दुखी होकर के और थोड़ा सा न खाए या थोड़ा सा मठ से बाहर चला जाए तो देखो तो ये कैसी बात होती है। इसलिए हरि कथा में ममत को लाती है हरि कथा, जितना ही हरि कथा जो श्रवण करेगा जितना ही भगवान का नाम करेगा जितना ही उनका मनन चिंतन करेगा उतना ही ये ममता आएगी। यही ममता पहले रुचि कहलाती है फिर कहलाती है आसक्ति, और यही ममता जब पूर्ण रूप में हो जाती है तो भाव कहलाता है। यही भाव जब परिपक्व होकर के अपनी पूर्ण दशा में उपस्थित हो जाएगा तो यही प्रेम कहलाता है, और उत्तर उत्तर ये ममत्व बढ़ता जाएगा। वही स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव इत्यादि तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। ममता ही भक्ति है असल में, ममता अतिशयांकित यह प्रेम है, और जब थोड़े से रूप में रहेगा तो उसको भाव कहते हैं। इसलिए ये इन हरि कथाओं के माध्यम से ही उनके प्रति ममता बढ़ेगी। जो जितना ही हरि कथा का अनुशीलन करेगा जितना ही हरि नाम शुद्ध रूप में करने की चेष्टा करेगा कृष्ण के प्रति ममत्व आएगा जरूर आएगा। इसलिए इन हरि कथाओं को सुनना चाहिए, हम लोग उसी दृष्टि से देखेंगे जो हमारा उसके प्रति लोभ हो। किसके प्रति लोभ हो, ये कौन कह रहा है, बेणु भी गोपियां कह रहे हैं, गोपियों का समूह कह रहा है। एक एक घर में गोपियां बैठी हैं, उसमें 10 गोपी 20 गोपी 50 गोपी अपने अपने भाव वाली हैं, स्वपक्ष वाली हैं, वो कैसे हैं एक साथ करते स्वपक्ष में है, ललता के गण वाली जो है वो एक साथ में बैठी, विशाखा के भाव वाली जो है वो अलग से बैठी, चित्रा वाली अलग बैठेगी, अष्ट सखियों के जितने भी हैं उनका अपना अपना एक महत्व है, एक एक स्वभाव है, कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा जी के प्रति अपनी एक निष्ठा है, इसलिए ये सब विपक्ष वाली एक साथ में, सुहित वाली एक साथ और तटस्थ वाली एक साथ में, ऐसे कितने हजारों उनके समूह गण इत्यादि हैं, जूत अपने अपने घरों में एक एक जगह एकत्र होकर के कह रहे हैं, कब कह रही हैं, कृष्ण गोचारण करने के लिए चले गए। जब गोचारण करने के लिए चले गए तो ये तो जहां तक कृष्ण दिखाई पड़े तब तक तो वहां तक गई, जब आंखों से ओझल हो गए कृष्ण तो वह अपने अपने घरों को लौटाई गई, लौटी नहीं लौटाई गई, किसके द्वारा लौटाई गई, जिन सखियों का भी उतना गाढ़ा प्रेम नहीं है, या उनकी सास हैं, माताएं हैं, बंधु हैं, भाई हैं, उन लोगों ने उसको पकड़ करके घर में लाया, अब यहां पर बैठ करके देख रही हैं भावनेत्र से, भावनेत्र में यहां पर बैठी हैं, भावनेत्र से देख रही हैं, सखियां भी बैठी हैं वो भी भावनेत्र से देख रही हैं, और देख करके तभी बड़ेन तो अभी धीरे धीरे क्या है वो गोपियां कृष्ण के अलक्षित होकर के कृष्ण जब चले गए वो गोपियां देखा जब कृष्ण को उच्चारण कर एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं और देखा क्या ये श्लोक जो है बराहपीडम किसका है सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कैसे कहा गोपियों ने इसको उच्चारण किया भाव से जब देखा कृष्ण को इस रूप में तो सुखदेव गोस्वामी के यहां परछाई पड़ी उसकी अब तब उन्होंने ये कहना है तो वो कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं कैसे बंसी वादन कर रहे हैं कैसे देख रहे हैं और सारी प्रकृति उनके प्रति क्या भाव से कैसे कर रही है उन्होंने सारी सब चीज को प्रत्यक्ष मूर्तिमान के रूप में देखा अपने से सबको श्रेष्ठ देखा देखा क्या पहला श्लोक तो इन्होंने बतलाया उनकी आंखें ही यथार्थ आंखें हैं आंखें रहना उन्हीं का सार्थक है जो कृष्ण का रूप देखा रूप ही नहीं एक बन से दूसरी बन में गायों के साथ सखाओं के साथ में जाते हुए देखा बलदेव जी आगे आगे बंसी बजा रहे हैं पीछे पीछे वेणु बजा रहे हैं कृष्ण देखा पीछे जो कृष्ण है वेणु बजा रहे हैं वो सदैव नेत्रों से बंसी बजाते हुए किसी और देख करके बंसी बजा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं उनका यह मुस्कान भरी जो वेणु है बजाना इसको जिसने देखा उसकी आंखें सार्थक है अन्यथा किसी की सार्थक नहीं है उसमें भी उसकी सार्थक है जो बलदेव जी को आगे जाते हुए देखा चले गए और पीछे से जो कृष्ण हैं श्रीमती राधिका के साथ में बंसी बजाते हुए देखा और दोनों ने बड़े करुण नेत्र से एक दूसरे के तरफ में देखा मुस्कुराते हुए देखा उनको जो यह दृश्य देखा उन्हीं की आंखें एकमात्र सफल हैं दूसरों किसी की नहीं है चुत प्रवाल बरहस्तौ कोत्प्लाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेश मध्य दिरे जतु अलं पशुपाल गोष्ठं रंगे जथा नटवरो त्वच गायमान ओ कृष्ण की मैं क्या अद्भुत सौंदर्य माधुर्य वर्णन करूं बड़ी भारी सभा जुटी हुई है कहां पर जुटी हुई है गोपेश्वर महादेव के विराट सामने विराट वन में बहुत लंबा चौड़ा समतल जमुना का किनारा हजारों सब ऋषि महंत सब रसिक वैष्णव लोग जुटे हुए हैं और उसमें दो सुंदर सुंदर नटवेश में बंसी लिए हुए मयूर मुकुट बांधे और बीच में उपस्थित हुए
और ऐसा सुंदर नृत्य करने लगे देखकर के सभी मोहित हो जाए। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। हमने कभी रास को खूब कम ही देखा है, एक दो बार कभी देखा, किंतु एक बार थोड़ा सा नट के रूप में देखा था, कृष्ण बना हुआ अद्भुत, और राधिका जी भी बनेंगे। ऐसा सब सुंदर नृत्य किया जो देश विदेश के लोग थे बन महाराज जी के यूनिवर्सिटी में, उनका नृत्य देकर के सौंदर्य देकर के सभी मुग्ध हो गए। बोली कैसी एकदम कोयल की, गले को भी मात करने वाली, कुहू कुहू को भी मात करने वाली। तो कृष्ण की क्या दशा होगी और उनकी, तो भाव नेत्र से यही देख रहे हैं। रंगभूमि में दो नट, एक श्याम एक गौर, एक बलदेव जी और एक कृष्ण बंसी बजाते हुए उतरे, देकर के सभा एकदम चकित हो गई। कि श्लोक का आरंभ च्युत प्रवाल, च्युत माने क्या है, आम्र प्रवाल, उसके लाल लाल जो भी पत्ते अभी जो निकलते हैं कोमल कोमल, उनको यहां पर रख लिया है कृष्ण बलदेव ने, या उसी के पत्ते को यहां पर गोलाकार बना करके यहां पर पहन लिया है, कनेर का फूल लगा लिया है, गले में दैजयंती माला झूल गए, चित प्रवाल बरहस तव को पलाब्ज, सुंदर सुंदर मयूर के पंखों को लेकर के ऐसे ही अपने केशों में लगा लिया है, बना बना हुए मुकुट कुकुट नहीं, ऐसे ही दो चार गुच्छ लेकर के यहां पर लेकर के लगा दिया है, बरहस तव को पलाब्ज, मालान प्रिक्त परिधान विचित्र वेश, उनका परिधान कैसा है, पहने हुए कैसे है वस्त्रों को अद्भुत। आगे चल करके बतलाएंगे, गाय को नोने के लिए पैर बांधने के लिए इसको तो यहां पर बांध रखा, और पास मैंने गायों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है उसको यहां पर डाल दिया है, मस्त खो करके दोनों, जैसे गायों को दोहन करने के लिए जाते हैं एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, एकदम गोपाल का वेश, सखाओं का वेश बना लिया। जब जैसा वेश वो करते हैं, यदि नंगे रहे तो और भी सुंदर, मान लो कि जैसे किसी गोपी ने कोई एक काली कोई चीज लगा दी मल दी मुख में, और भी परम सुंदर, एक आदमी खूब सुंदर हो, एक लड़की या लड़का, और एक मशा हो जाए, मशा कहते हैं काला सा, वो तो खराब नहीं दिखता, और भी अधिक सुंदर दिखता है। ऐसे ही कृष्ण के अंगों में जो कुछ लगा दिया, जब धूल लग जाती है रास्ते की गौओं के खून से उठी हुई, ओ कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को और न जाने कितना बढ़ा, मालानुप्रिक परिधान विचित्र वेश, मध्य बीरजतु अलम पशुपाल गोष्ठ्यांग रंगे जथा नत्वरो चुगायमान, ऐसे सुंदर वो गान करते हैं, कैसे बंसी के द्वारा गान कर रहे हैं, अत्यंत अद्भुत सुंदर दिख पड़े। इतर में गोपियां देखा जी उनके अधरों पर मुरली भी जा रही विराजमान, बस उनको हो गया मान, और चीर करके अबुलाना देते हुए वो कहने लगे, गोप्या कुशल किमाचर दैन कुशल स्मेणु दामोदर धार अपि गोपिकानं भुंते स्वयं अवशिष्ट रसन गन्नो चो अश्रु मुमूचुस जथो तरवो जथार जा, कितनी ढीठ कितना ढीठ है ये बेणु, पुरुष होकर के भी हम लोगों के अधिकार में रहने वाली चीज पर जबरदस्ती हम लोगों को दिखलाते हुए अंगूठा, और कृष्ण का यह मुखारविंद का अधरों का यह रस पी रहा है, हम लोगों के अतिरिक्त किसी का इस पर अधिकार नहीं है, और हम लोग को दिखलाते हैं, हम लोग को दूर फेंक करके और हमारे सामने हमारी संपत्ति को लूट रहा है, हम चू तक नहीं कर सकते, अपनी विवशता यहां पर दिखला रहे हैं। बेणु एक काट की सुखी है नाली और उस पर इतना चीर, यही महाभाव का लक्षण है। अप्राणी में भी, प्राणी में भी कृष्ण सेवा की कुछ नहीं, और कभी तो देखती है महाभाव की अवस्था में जो हमसे भी ये श्रेष्ठ हैं और कृष्ण की सेवा कर रही है। वैष्णव लोग गुरु के
कोई गुरु सेवक अपने गुरु भाइयों को किस लिए सम्मान देता है, किस लिए आदर करता है? जितना ही उच्च सेवक होगा उतना ही देखेगा जी हमसे अधिक गुरु जी की सेवा कर रहा है। यहीं से अभ्यास पहले हो, गुरु सेवक है मान्य अपनार, क्यों क्यों मान्य हो, इसीलिए वो देखता है ऐसा। मैं सेवा जो नहीं कर सकता हूं उसे अधिक सेवा करता है, सेवक का यही हृदय में भाव होता है। जिसको ऐसा होगा वो सब सेवकों को मान्य देगा। ईर्ष्या भी अन्यथा तो ईर्ष्या होना बाध्य है, इसलिए वहां पर वो गोपियां कहती है वेणु जो मैं सेवा नहीं कर सकती और हमारे धन को हमारे सामने ही जिस पर मेरा शक्ति है और उसको अपहरण कर रहा है। वेणु पुरुष जाति होकर के भी स्त्रियों के जो की संपत्ति है उस पर वह अधिकार कर रहा है, तनी के भी नहीं रखता, कुछ भी अवशिष्ट है पूरा का पूरा पान कर रहा, हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रख देता तो भी नहीं रखता। देखो तो ये हम चिढ़े नहीं, क्यों नहीं चिढ़े? इसके बाप दादे हैं, ये भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम से आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। हमारे कुल में एक ऐसा हुआ जो कृष्ण के अधर पर बैठ करके उसका पान कर रहा है और कृष्ण का कैसा प्यारा है, जरा वो बेणी को दे दो ना, बांसुरी हमारी दे दो, कौन कर रहा है? कृष्ण हाथ जोड़ करके गोपियों से, वही बैल से जो हमारी प्राण से भी प्यारी है, जिसको एक समय एक क्षण के लिए भी सोते अवस्था में नहीं छोड़ता और उसको उन लोगों ने चोरी करके ले ली, प्राण ले लिया होता तो कोई बात नहीं होती, किंतु बंसी ले ली, पैया पड़ो तुम, मैं उनकी पैया पड़ रहा हूं, भाई बंसी तो हमारी दे दो, प्राण तुम इसके बदले ले लो किंतु बंसी दे दो। तो ये बंसी जिस कुल में पैदा हुई, कौन कुल में पैदा हुई? बांस। किंतु बांस के बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, वो कौन है? बरगद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये बड़े भैया हैं, और छोटे भैया सब पांच बहुत भाई हैं ये लोग, वो नंद बाबा के तो दो बड़े और दो छोटे और बीच में वो पांच भैया हैं, और इनके कितने हैं? बरगद आम इत्यादि लाखों पेड़ हैं, और छोटे में कौन है? बांसों से भी छोटे जो पतले ये इत्यादि हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं। आज उन सबको गुमान है कि हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो कृष्ण का इतना प्यारा हो गया जो गोपियों की संपत्ति को भी अपहरण कर रहा है और सब समय उनके मुखार बिंद पर विराजमान होता है, कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है स्वप्न में, इसलिए आज अपने वंश में बांस को देकर के तो कोई बात ही नहीं, उनके जो बड़े भैया छुट भैया हैं पेड़ सब बरगद के इत्यादि के नीम के और सब चीजों के ये प्रेम से आंसू बहा रहे हैं, अर्थात उनसे रस की धारा निकल गई, बड़े प्रफुल्ल हैं, कदम्ब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों आज वंश हमारे वंश में तो वो क्या कर रहा है, एकदम पुलक से भर गया, आम के पेड़ में मंजरी लग गई, एक पेड़ होता है हर श्रृंगार, देखा है हर श्रृंगार सब समय श्रृंगार से भरा रहता है, और कृष्ण के लिए अपने सारे फूलों को एक साथ ही जमीन पर बरसा देता है। जब ये वो हर श्रृंगार से पूरे फूल गिर जाए तो आप समझो कि अब क्या हो गया, ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, निशांत हो गया, अब रात अंत हो गया, ये समझ लो। जिस समय रात अब बीतती जाएगी, तारे और चंद्र धीरे धीरे ओझल होते चले जाएंगे, जब तारे ओझल होने लगेंगे तो ये भी अपना फूल सब छोड़ देता है, अब रात समाप्त होने वाली है। ऐसे ऐसे सबके हैं, बड़े प्रसन्न हो गए, लताओं में फूल भर गए, वो भी प्रसन्न हो गई, आज हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र हुआ। यथार्या जैसे आर्य लोग उनके पूर्वज लोग, यदि कृष्ण अपने कुल में कोई एक भी भक्त हो गया शुद्ध तो उसके पूर्वज लोग पीछे से आने वाले लोग सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल में एक ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज के कुल में आज तक भी लोग आते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि मनुष्य तो थे ना पुरुष, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य लोक में हमारे कुल में प्रहलाद महाराज जी जैसा भक्त हुआ है। नरलीला में, या जैसे हो नर नर थर में कृष्ण पैदा हुए, और किसी कुल में तो हुए नहीं, तो वो हमारे ही कुल में हुए। हम लोग का गोत्र क्या है, जो कृष्ण का भजन करता है वो सब अच्युत गोत्र है, विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव सब, स्त्री हो पुरुष हो सबका गोत्र अच्युत। इसी तरह से समझो आज वो बड़ी प्रसन्न है, सभी लोग बड़े प्रसन्न है, आज हमारे कुल में ऐसा हुआ, केवल एक प्रसन्न नहीं है ये गोपी, किंतु दूसरा यदि होगा ना तो हम लोग तटस्थ है ना, हम लोग कहेंगे गोपियों के समान और किसी को आनंद नहीं हुआ। तो करें इन गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की, कुशल स्मदेन किम्माचरत एम कुशल स्मदेन, वो ये जो कुशल मानी जो धन्य है वेणु, इसने कौन सी पूर्व जन्म में इसने तपस्या की, सखी हम लोग जानती तो आज ही से वो तपस्या हम आरंभ कर दें। तो हम लोगों भी यही सोचे विचारे जो हम आज से ही वो चीज को जाने कि कैसे कृष्ण पाए जाते हैं और ये भाव कैसे आते हैं, ये गोपियों का भाव कैसे आते हैं, उसके प्रति लोभ हो और उसको जानने की चेष्टा करें। कहां मिलेगा ये सब चीज, मिलेगा कहां से, जो इस भाव को प्राप्त करता है उसकी कुंजी कहां है, भक्त गोस्वामी सुंदर उज्ज्वलिंग इत्यादि ग्रंथों में गोस्वामी ग्रंथ, किंतु चाबी किसके पास में है, रसिक और भावुकों के पास में है, उनके पास में जाएंगे, निहोर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, देखेंगे बार बार अनुसंग कैसे मिलता है, इसका इस प्रकार से साधन। आज गोपियां उस साधन को खोज रही है, कैसे हुआ वेणु, और समझते हैं कि वो जो वेणु हुआ होगा वो कैसे गोपियों का चरित्र में लोभ हो करके तब किसी प्रकार से वो बांस कुल में जन्म लेकर के तो आज वेणु हुआ, गोपियों की कृपा से ही समझो आज गोपियां ललक रही हैं कि मैं वेणु होकर के जन्म लेती, ऐसी तपस्या करती कि वेणु कुल में जन्म होता, वेणु बन करके कृष्ण के मुखारविंद, इसलिए आज उनके प्रति ईर्ष्या हो रही है। क्या कर पुनः पुनः कल होगा, कल कल इस तरह से वो आगे बढ़ती है, क्योंकि तो हमारे लिए बस की बात नहीं है, वेणु होना कृष्ण के मुख पर विराज होना ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं है। अच्छा तब वृंदावन में कहीं एक धूल भी बन जाए, धूल का ना भी वृंदावनम सखी भो वितनोत जग देव केशत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुम अनुमृत मयूर नित्यम प्रेक्षात शान अवर्तान समस्त सत्वम। हाँ देखो तो आज ये वृंदावन भूमि पृथ्वी का, मैं पृथ्वी में सबसे आज पृथ्वी को धन्य कर रहे हैं, वृंदावनम सखी भो वितुन कृति, आज पृथ्वी में सबसे इसी की वृंदावन की कृति हो रही है, और वृंदावन है इसलिए मथुरा की कृति, मथुरा इस विश्व में है इसलिए उसकी कृति, विश्व की पृथ्वी की कृति, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेगा। यदि पृथ्वी में मथुरा नहीं रहता तो पृथ्वी की कोई भी ख्याति नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती, और मथुरा में वृंदावन यदि नहीं होता तो इसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं। इस वृंदावन में ये बंशीवट इत्यादि नहीं होता तो वृंदावन का क्या महत्व रह जाता है, जहां पर राशि नहीं हुआ उस वृंदावन दर में भी 84 कोष के बजमंडल में या 16 कोष वाली परिधि वृंदावन में यदि गोवर्धन गिरिराज नहीं होते तो वृंदावन का महत्व क्या होता, और उसी गोवर्धन की तराई में यदि श्याम कुंड और राधा कुंड नहीं होते तो इसकी भी क्या महत्ता रह जाती, इसलिए एक एक से अधिक यहां पर वृंदावन की कह रहे हैं। वृंदावनम सखी वो वितुने तु कवि, पृथ्वी लोक में वृंदावन के स्वभाव को हो रही है, क्यों हो रही है, जब देव के ईश्वत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, आज कृष्ण के चरण कमल मधुर मधुर जिसमें ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल इत्यादि स्फूट रूप से परिव्यक्त है। कृष्ण के जब चरण कमल पढ़ते हैं 19 प्रकार के उनके चिन्ह हैं, साधक लोग उसका ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमती राधिका के चरण चिन्ह भी हैं। तो कृष्ण 19 हैं, जिसमें और कोई प्रकट हो चाहे ना हो, किंतु कमल, ध्वज, वज्र, अंकुश, त्रिभुज, कलश ये जरूर रहेंगे, प्रोमिनेंट रूप में ये रहते हैं। आज वृंदावन में कोई भी स्थल नहीं है जहां पर कि ये चीजें नहीं, जहां देखो तहां पर वज्र, ध्वज, अंकुश, कृष्ण के चरण छोटे छोटे मधुर मधुर ये चरण कमल पहने हैं। ये वृंदावन के अतिरिक्त कहां होगा। और उसमें कृष्ण को जो ही देखा मयूरों ने, वो धन्य है मयूर इस वृंदावन में। प्रच्छाद्री शानु गोवर्धन गिरिराज है, उनके शानु प्रदेश में। शानु माने क्या, जो समतल भूमि है नीचे वाली, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भी हुआ रहेगा, समतल भूमि जो है यहां की। कदम्ब के वृक्ष, तमाल वृक्ष हैं, आम हैं, कदम्ब के हैं, चारों तरफ से फूल लगे हुए हैं, लताएं हैं जो वृक्षों के ऊपर में चढ़ रही, फूलों फलों से भरती है, उसमें मुक्ता लता भी होगी। उसमें जहीं कृष्ण ने प्रवेश किया गोचारण करते हुए, मयूरों ने देखा और कूकना आरंभ कर दिया, मेघ को जैसे देखते हैं, और आनंद में भर करके उनको देखा, पंख फैला दिए इस प्रकार से, और नाचना आरंभ किया। समझा जाए मेघ हमारे जो बंधु हुए यार, मेघ से सुंदर बंसी की ध्वनि हुई, मैंने कृष्ण ने बजाई, मयूर लोग थिरकने लगे और उसके शब्दों पर नृत्य करने लगे। जैसे जैसे बंसी बजती है, अब बंसी के ध्वनि पर मयूर लोग थिरकने लगे, एकदम देह की शुद्ध बुद्धि भूल गई। अब मयूर का नीचना देखना था, कृष्ण को और हो गया उत्साह, अब उन्होंने पंचम से सप्तम, सप्तम से इस तरह से सूर्य की रागों में तरह तरह के सुरों को भरना आरंभ किया। मयूर एकदम मदहोश होकर के नृत्य करने लगा, कभी कभी के का एक साथ में हजारों बोल उठते हैं। इधर में उनको देखा अवर्तानी समस्त सत्व, क्वेल ने देखा, दो एक क्वेल ने कुहू की, किंतु आज वो एकदम चुप हो गई, नित्य ऐसा कभी देखा नहीं, कोयल नित्य नहीं करती। उनका नित्य देख करके और कृष्ण का बंसी वादन और उनका मुखारविंद दोनों देखा, इधर मयूरों का नित्य करना देखा, एकदम वो भी एकदम तन मन विशुद्ध सब कुछ हो गई। देखा कबूतर है, कोयल, सूक हैं, सारी हैं, ये सब एक साथ में चुपचाप ही करते, बोले बोलना भूल गए वो लोग। तो ये वृंदावन में ही संभव है समस्त। मयूर जब नृत्य करने लगा और बंसी कृष्ण बजाने लगे, तो मयूर ने अपनी पंख झाड़ दी और एक सुंदर पंख उसमें से निकला नीचे।